Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhayadasyagnistapati bhayattapati suryah भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का तीसरा मंत्र है और इस मंत्र में सृष्टि की अनुशासिता के रूप में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण सृष्टि का वो जनक है, पालन पोषण करने वाला है और अंत में उसका विनाश भी करने वाला है। जो मूल तत्व हैं, ब्रह्म तत्व, उसी के अनुशासन में सृष्टि की जन्म, पालन और विनाश की क्रियाएं चलती हैं। अनुशासन में भय होता है और बिना भय अनुशासन नहीं होता है और इसी भय से संपूर्ण सृष्टि का ये चलन, व्यवस्था, व्यवहार चल रहा है। समष्टि में और व्यष्टि में भी, एक व्यक्ति के रूप में भी व्यक्ति पर किसी न किसी का अनुशासन होता है, किसी न किसी का भय होता है, इसलिए व्यक्ति का जीवन चलता है। एक परिवार के रूप में भी अनुशासन है, भय है। एक समाज के रूप में, सामाजिक रूप में भी हमारे जीवन में भय है और इस राष्ट्रीय रूप में, कानून के रूप में भी भय है कि कहीं कानून का उल्लंघन ना हो। प्रकृति के तत्वों के नियमों का भय है, ईश्वरीय कानून का भय है और ये संपूर्ण भय हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन का मूल आधार ही भय है। भय के बिना हमारा जीवन एक क्षण भी संभव नहीं है। आप सुबह उठने से लेकर मरने, शैया पर जाने तक, जन्म से लेकर मरने तक अनेकों प्रकार के भयों से होकर गुजरते हैं और वो भय हमारे जीवन में वरदान है, अभिशाप नहीं है। आप सुबह उठते हैं और उठकर जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के मूल में भी भय होता है। आप सुबह चाय पीते हैं तो डरते डरते पीते कि बिना डरे पीते हैं? आपको लगता होगा कि बिना डरे पीते हैं, लेकिन बिना डरे आप चाय पियोगे तो अपना मुख जला लोगे। आप वो गिलास अपने मुख में लगाते हो ना तो डरते डरते लगाते हो। आप बच्चे के हाथ में गिलास दे देना, वो बिना डरे वो मुख डाल देता है और उसके बाद उसका मुख जल जाता है, वो रोने लगता है। वहां भय है, मुख जलने का भय आपको बहुत सावधानी से चाय पीने की प्रेरणा देता है। आप नाश्ता करते हैं तो डरते डरते करते कि बिना डरे करते हैं? डरते डरते करते हैं, कहीं पेट न खराब हो जाए, गला न खराब हो जाए। यदि अस्वस्थ होने का भय न हो, गला खराब होने का भय न हो, पेट खराब होने का भय न हो, तो आप बहुत कुछ खा लेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो बीमारी का भय है ये बुरा नहीं है। आपको डॉक्टर बोल देता भैया ये मत खाना, ये खाने से तुम्हारा गला खराब होगा, आपके मन में एक भय पैदा हो गया। और ये भय पैदा होना बहुत जरूरी है, ये आपको अनुशासित कर देगा। आप कोई भी क्रिया करते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो भी डरते डरते, रास्ते में कहीं टकरा न जाए गाड़ी, वो भय है। और इसलिए आप अनुशासित होकर अपने दिशा में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। आप गाड़ी से उतरते भी हैं तो धीरे धीरे, डर कहीं गिर न जाए। आप सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो डरते डरते, और यहां तक कि आप कुर्सी पर भी बैठे तो हां डरते डरते कहीं गिर न जाए। दुनिया में ऐसा जीव असंभव है जहां जीवन है, जहां भय ना। और ये भय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप पारिवारिक रूप में एक दूसरे से डरते हैं, बच्चे आपसे डरते हैं, आप पत्नी से डरते हैं, पत्नी आपसे डरती है। और ये स्वीकार करने में भी डरना नहीं चाहिए। यहां कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने पत्नी से नहीं डरता, और किसी की पत्नी भी नहीं होगी जो अपने पति से नहीं डरती। और ये दोष भी नहीं है। एक दूसरे का भय, एक दूसरे का भय अनुशासन पैदा करता है। और ये समष्टि जो दुनिया है वहां से भय शुरू है, एक व्यष्टि के साथ जुड़ा हुआ भय वैसे समष्टि के साथ भी है। ये भय केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये समष्टि के साथ है। एक चींटी में भी भय है। आप चींटी को थोड़ा इशारा कर देना, अंगुली दिखा देना, वो भागना शुरू कर देती है। मकड़ी आपके पास आते ही वो उछल जाती है, दूर भाग जाती है, वहां भय है। शेर भी आपको देख करके भागने लगता है, वहां भी भय है। इंद्रादि देवताओं में भी भय है। दुनिया में जीव तत्व बिना भय संभव ही नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहां डरना है और कहां नहीं डरना है, कितना डरना है और कितना नहीं डरना है। आप आवश्यकता से ज्यादा डरते हैं तो एक बीमारी है, और आप आवश्यक ढंग से डरते हैं तो आपका जीवन है, अनुशासन है, जीवन का निर्माण है। यहां पर श्रुति यही तो कह रही है, भयात अग्नि स्तपति, भयात तपति सूर्य। अग्नि ही तपति भयात। आपके सामने पांच भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और एक काल भी। ये शरीर हैं पांच भौतिक, आपके पास इंद्रियां भी। ये पृथ्वी जो है इतना अनुशासित होकर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके मूल में कोई अनुशासन है। अभी यहां पर व्यवस्थित बैठे हैं आप, वहां एक अनुशासन है, सबके ऊपर अनुशासन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अनुशासन दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अनुशासन आपको व्यवस्थित करता है। यहां जो भी व्यक्ति है एक अनुशासन में बंधा हुआ है, और अनुशासन के मूल में एक अदृश्य भय है। ऐसे समष्टि दुनिया में बहुत सारी चीजें बहुत व्यवस्थित हैं। ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और वो परिक्रमा करती है तो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से। आप कभी अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं यदु बाबू जी, थोड़ा लेट भी जग सकते हैं, आप थोड़ा लेट सो भी सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी कभी ऐसा नहीं होता है कि दो मिनट आगे पीछे हुआ, नहीं, वो नियम है, वो सर्कल कंप्लीट करना है, पूरा करना है, किस समय किस दिशा में पहुंचना है, किस समय उसको कहां होना है, ये निश्चित है। और केवल पृथ्वी नहीं है, वो हजारों तत्व जो हैं, हजारों अंतरिक्ष के पिंड, नक्षत्र, तारांगन, वो अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने रास्तों में विचरण कर रहे हैं। एक अनुशासन है, बहुत बड़ा अनुशासन है। यहां केवल पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी का अर्थ केवल ये पृथ्वी आप जैसे गिनाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, ऐसा बोलते कि नहीं, तो आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी है कि नहीं? आपका मंगल ग्रह पृथ्वी है कि नहीं? अनेकों प्रकार के ग्रह जो हैं वो पृथ्वी हैं। अनंत अंतरिक्ष जो पृथ्वीआत्मक है, भले ही पृथ्वी नाम से आप नहीं जानते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व के रूप में जो अनंत अनंत पृथ्वी तत्व हैं, वो उस चेतन तत्व के अनुशासन में चलते हैं। उसके अंदर एक अपना स्वभाव है, पदार्थ का अपना एक स्वभाव है, वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, और छोड़ता भी है तो छोड़ने की उसकी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार छोड़ता है। जैसे जलीय तत्व, जल के अंदर द्रवता है, जल के अंदर अनेकों प्रकार के गुण हैं, जीवन है वो, और वो जीवन अपने अंदर धारण करता है जल, और वो जल बन जाता है बर्फ। उसके मूल में भी वो तत्व है, वो एक अनुशासन है, वो एक नियम है। जल के अंदर भी बहुत सारे नियम काम करते हैं, और यहां पर कहते हैं कि भयात अग्निस्तपति, यहां तो अग्नि तो उपलक्षण है, यहां समष्टि के अर्थ में आपके सामने अग्नि, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अग्नि, अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अग्नि हमारे पास न होती तो बहुत सारे आविष्कारों का मूल अग्नि तत्व, ये बाहर की अग्नि, भीतर की अग्नि, हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है। आप शरीर को छूके देखेंगे, आपको अग्नि तत्व का अनुभव होगा। जठराग्नि भी है, खाए हुए पदार्थों को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि है, और वो कितनी व्यवस्थित है। आपके खाए पिए पदार्थों को पचाकर उसका रस बनाकर वो शक्ति में, ऊर्जा में वो बदल देती है। और ये अग्नि ना हो तो हमारे अंदर ऊर्जा ही पैदा ना हो। ये भगवान ने अंदर भट्टी बना रखी है, भट्टी, और आप खाते जाते, पीते जाते, उसको पचाकर, उसका रस बनाकर, ऊर्जा में बदलकर आपके रोम रोम तक पहुंचा देती है अग्नि। और ये बाहर की अग्नि भी, सूर्यस्तपति, अग्निस्तपति, बोले अग्नि तपती है, और अग्नि क्या करती है, तपती है, तपती है, तपाती भी है, इसके दोनों स्वभाव है। अग्नि में तापकत्व स्वभाव है, प्रकाशकत्व स्वभाव है, अग्नि प्रकाश देती है, बाहर के पदार्थों को दिखा देती है, वो स्वयं भी तपती है, तपना उसका स्वभाव है, प्रकाश उसका स्वभाव है, और वो दूसरे को तपा देती, दूसरे को गर्म कर देती है, और वो दूसरे को जो गर्म करना है ना, वो दोनों चीजें दिखा भी देना, आंख के द्वारा, अग्नि ना हो तो प्रकाश के बिना, अग्नि के बिना आप पदार्थों का दर्शन नहीं कर सकते, और अग्नि को तपाकर उसको परिवर्तित कर देती है। जब बारिश होती है तो आपने कभी जमीन के अंदर हाथ डाल के देखा होगा, उस समय बहुत गर्मी होती है, उसमें ये जमीन गरम गरम हो जाती है, और उस गर्मी के कारण अनेकों प्रकार के बीज वहां अंकुरित हो उठते हैं, वहां यदि गर्मी न मिले भूमि को तो वहां बीज अंकुरित ही नहीं होगी। और वो अग्नि यदि तपाए नहीं जल को, भाप न बनाए, तो पुनः जल कैसे बनेगा? जल को भाप बनाकर वो आकाश में उठा लेते और वहां पुनः वो बादल बनते, पुनः वो जल के रूप में बरसाते, जहां जल नहीं वहां पहुंचा देते बादल। कैसी ईश्वर की प्रक्रिया है, कैसी ईश्वर की प्रक्रिया? आपको थोड़ा भी 10-20 लीटर भी पहाड़ के ऊपर पानी ले जाना हो तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और वो हजारों लाखों लीटर पानी पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। लाखों लीटर पानी हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है। ये ईश्वर की प्रक्रिया अग्नि के द्वारा जल को भाप बना देना है, भाप के बादल बनेंगे और वो बादल आकाश से होकर विचरण करेंगे, बहुत दूर दूर तक पानी बरसा देंगे। इसके मूल में अग्नि तत्व है। अग्निस्तपति या अग्नि तपात्नी है, ये जीवन की प्रक्रिया है, ये एक अनुशासन है, और अग्नि हमेशा तपाने का ही काम करती है। हमारे सामने तीन प्रकार की अग्नि हुआ करती है, एक अग्नि दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और तीसरी आह्वनी अग्नि। दक्षिणाग्नि माने ये दुनिया में जहां भी आपको बाहर अग्नि दिखाई देती है, समष्टि विराट छोटी बड़ी के रूप में, ये दक्षिणाग्नि है। आपने लकड़ी को रगड़ा, अग्नि पैदा हो गई, जंगल जलने लगे, लकड़ियां एकत्रित की, आपने अग्नि जला दी, ये आपको दक्षिणाग्नि कहलाती है। और ये अग्नि जो है ना, पुनः आप इसको चयन करके वैदिक विधान से मंत्रों के द्वारा उसका चयन कर अपने घर में ले आते हैं, इसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। पुराने जमाने में वेद विधान से मंत्रों के उच्चारण से विधिवत अपने घर में अग्नि की स्थापना की जाती थी। एक विशेष प्रकार का कर्म था अग्न्याधान कर्म, और अग्न्याधान कर्म करने के बाद फिर आप उसको निश्चित कर लेते थे, अब ये कभी बुझेगी नहीं, हमारे घर की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। उस अग्नि को गार्हपत्य अग्नि कहा जाता था। गार्हपत्य अग्नि माने वैदिक मंत्रों के उच्चारण विशेष कर्मकांड के द्वारा आपने उसको अपने घर में स्थापित कर दिया है, अब उसकी आप रक्षा करेंगे और उस अग्नि के द्वारा आप अनेकों प्रकार के कर्म करेंगे। अब वो अग्नि सामान्य अग्नि नहीं रही, वो अग्नि धार्मिक अग्नि हो गई, वो अब सच्चे अर्थों में पावक हो गई, वो पवित्र करने वाली हो गई। अब आप जो भी कर्म करेंगे गृहस्थाश्रम के उस अग्नि को सामने रखकर, अब आपके घर में भोजन बनेगा उसी अग्नि से, और जब आप हवन करेंगे सुबह तो भी उसी अग्नि से, और आप यज्ञ याग करेंगे तो भी उसी अग्नि से। इसलिए उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा धर्म का प्रचार है, कर्मकांड का ज्यादा प्रचार है, इसलिए दक्षिण भारत में आपको अग्निहोत्री, उसको अग्निहोत्री बोलते हैं, अग्निहोत्री त्रैवर्णिक गृहस्थाश्री भी मिलते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अग्निहोत्री अपने घर में वैदिक विधान से अग्नि की स्थापना करते हैं और उसी अग्नि के द्वारा वो यज्ञ करते हैं, उसी अग्नि के द्वारा अपने सारे कर्म करते हैं। अब जैसे आपको अग्नि के फेरे लेने हैं तो आप कौन सी अग्नि ले आओगे? माचिस वाली अग्नि, लाइटर वाली अग्नि लाओगे? पुराने जमाने में वो अग्निहोत्री अपने घर में स्थापित जो गार्हपत्य अग्नि, उसके द्वारा, और अग्नि के बिना आप कोई भी धार्मिक कर्म नहीं कर सकते। आपको यज्ञ करना है, हवन करना है, अगरबत्ती जलाना है, आरती करना है, प्रसाद बनाना है, अग्नि की जरूरत है। और तीसरी जो अग्नि है, एक दक्षिणाग्नि हो गई, गार्हपत्य अग्नि हो गई, और तीसरी आहवनी अग्नि। आहवनी मने वही, गार्हपत्य अग्नि में तो सारे कर्म हो जाते हैं, और आहवनी मने यज्ञनिष्ठ अग्नि। आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, बहुत बड़ा यज्ञ आपने अपने पुराणों में सुना होगा। नैमिष्य अरण्य में 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आरंभ हुआ, 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ। एक यजमान संकल्प लेगा और अपने जीवन भर यज्ञ करेगा, उसके बाद फिर वो संकल्प दूसरे को दे देगा, वो दूसरा फिर वो यज्ञ करता रहेगा, वो संकल्प तीसरे को देगा, चौथे को देगा। ऐसे संकल्प लिया गया 1000 वर्ष तक यज्ञ चले। ये आहवनी अग्नि जिसमें आप हवन करते हैं, देवतो देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ, देवताओं को सामने रखकर जो आप द्रव्य का त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, वही यज्ञ है। इंद्राय स्वाहा, आप बोलते हैं इंद्र को हम ये समर्पित कर रहे हैं, हम अपने स्वत्व का त्याग कर रहे हैं। और ये यज्ञ जो है ना, त्यागात्मिका क्रिया है, त्यागात्मिका क्रिया है, आपको छोड़ना है। नमे इति नमः, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। और धीरे धीरे अपने ममता का त्याग करते जाना है, ये छोड़ने की आदत में जाना है। जैसे आप दान करते हैं, दान ये छोड़ने की आदत में जाना है। दान करने से आपको स्वर्ग मिलता हो कि नहीं, ये बात ऐसा नहीं है। आदमी सोचता है कि दान करने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा ये ऊपर वाला नहीं मिलेगा, यहीं का स्वर्ग मिलेगा। और वो यहां का स्वर्ग है वैराग्य। सबसे बड़ा जो सुख है ना, वो वैराग्य में ही सुख है। आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं? वहां बहुत सुख है, वहां बहुत आनंद है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसलिए आदमी चाहता है कि स्वर्ग जाए। आपको हम बोले कि आप स्वर्ग जाओगे, बोले हाँ। हम बताएं कि वहां भाई पंखा नहीं है, वहां एसी भी नहीं है, वहां बिछोने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं है, और बहुत सारे बड़े बड़े डेंगू वाले मच्छर हैं। तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं स्वर्ग में? नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रलोभन डेंगू मच्छर नहीं है, वो तो बहुत दुखद चीज है। आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां बहुत व्यवस्था हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, मस्ती हो, स्वास्थ्य हो, और वो सारी चीजें जो है ना आपके वैराग्य के अंदर है। न चेन्द्रस्य सुखम अस्ति न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविनः। आपको स्वर्ग में ले जाना नहीं है शास्त्र को, आपको ले जाना है वैराग्य में, आपको ले जाना है त्याग में, आपको ले जाना है छोड़ने की क्रिया में। आप दान कर रहे हैं, दान करें तो क्या कर रहे हैं आप? छोड़ने की आदत में ले जा रहे हैं आप अपने आप को। आपने 10 रुपया मंदिर में डाल दिया, आपने 10 रुपये का त्याग कर दिया है। आपने 1000 रुपया डाल दिया, आपने 1000 रुपये का त्याग कर दिया। आप ये अंदर धन की आसक्ति आप कम करते जा रहे हैं, दान करने से धन की आसक्ति कम हो जाती है, भोजन खिलाने से खाने की आसक्ति कम हो जाती है, वस्त्र दान करने से पहनने का जो पागलपन है, वस्त्र के प्रति आसक्ति वो कम हो जाती है। आपके अंदर जिसका पागलपन है वो आप दूसरे को देते हैं तो वो पागलपन कम होता जाता है। और ये वैराग्य में सुख है, छोड़ने में, त्याग में, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि त्याग करो देवतो देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ, बोले यज्ञ करो यज्ञ। आपको प्रलोभन तो दिया स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाने की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे वैराग्य में ले जाना है। ये यज्ञ है माने देवतो देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ। और अग्नि क्या करती है, अग्रे नयती थी अग्नि, ये अग्नि जो है ना वो आगे ले जाती है। अग्नि का अर्थ होता है जो आगे ले जाए, आप में डाला और वो अग्नि आगे बढ़ा देती है, ये अग्नि का स्वभाव ही है। आप जहां भी जो भी डालोगे उसको आगे बढ़ा देती है, आगे नहीं बढ़ाती है। आपने पेट में रसगुल्ले डाल दिए और उस जठराग्नि ने क्या किया रसगुल्ले को, आगे बढ़ा दिया। आपने पानी पिया और उस अग्नि ने क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया। कच्चे आम थे और आपने उसको थोड़ा पकाया, पकाया थोड़ी अग्नि दे दी, तो उस अग्नि ने क्या किया, उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। वो आम कच्चे थे तो उसको पका दिया, जो हरे थे उसको पीले कर दिए, उसकी सुगंध नहीं थी उसको सुगंधित बना दिया, पहले खट्टे थे वो मीठे हो गए, पहले कठोर था आम उसको मुलायम बना दिया, उसने उसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया।